त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव
तेरी दया जिस पर हो जाए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जहां चार भारतीय रहेंगे वहां पर राम और सीता का भी छाया होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को महारानी कौशल्या की कोख से हुआ था, इसलिए ये रामनवमी के नाम से पुकारी जाती है। पूरे भारतवर्ष के हिंदू परिवार में खास तौर पर राम का ये जन्म महोत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक राम मंदिर में भक्तों द्वारा राम का गुणगान किया जाता है। श्री राम को पंचामृत में स्नान करा के धूप दीप नैवेद्य इत्यादि के द्वारा अभ्यर्चना करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने अमर काव्य रामचरितमानस की रचना इसी दिन अयोध्या में आरंभ की थी। अयोध्या में इस तिथि पर बड़ा भारी मेला लगता है और दूर दूर अंचलों से आए हुए यात्री राम मूर्ति दर्शन, सरयू स्नान तथा आदि पुरुष की अतीत लीलाओं में खो जाते हैं। भक्त जनों को इस दिन मध्यम तक उपवास करना चाहिए। रामचरित मानस का पाठ करके दोपहर के समय भगवान की आरती उतारी जाती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और किमछो। प्रतिमा का बहुत सारा प्यार आप सभी तक पहुंचे। प्लेनेट एफएम 104.6 का प्रसारण है ये। हमारे प्रोग्राम को आप 104.6 एफएम द्वारा सुन रहे हैं और इसके अलावा इंटरनेट द्वारा www.planetaudio.org.nz/jhankar द्वारा भी आप सुन सकते हैं। 7 दिनों तक हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर रुका रहता है। अगर आज आपको मौका नहीं मिला तो 7 दिन के भीतर में जाकर हमारे प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। आज का सारा प्रोग्राम रामनवमी पर आधारित रहेगा और आपको सुनने को मिलेगा हमारी यूनिवर्सल भक्ति मेडिटेशन सुश्री गोपेश्वरी दीदी की जुबानी रामनवमी के महत्व पर उनका संदेश। और आइए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक और प्यारा राम भजन।
रामचंद्र भगवान की जय। भगवान क्या जन्म लेते हैं जैसे हम और आप, या उनका जन्म कुछ विशेष होता है? जन्म कर्म च दिव्यामेवम यो वेत्ति तत्त्वतः, जैसे गीतोपनिषद उपदेश में कहा गया कि भगवान का तो जन्म कर्म सभी दिव्य होते हैं। हम जन्म उत्सव जरूर मनाते हैं, लेकिन प्रभु तो वास्तविक रूप से प्रकट होते हैं। उनकी जो शरीर है वो तो चिदानंद है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानी अधिकारी, सच्चिद आनंद। जैसे शिव जी जब संपूर्ण जगत को श्री राम महिमा दर्शाया तो क्या किया? जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, को न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। पार्वती जी को परीक्षा लेने के लिए जब विवश कर दिया तो शिव जी ने क्या किया था? जो पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म को विधि हरि शंभु ना जान सके, ऐसे कहकर यही बखान कर रहे हैं कि भगवान की महिमा कौन जान सकता है, सिर्फ भगवान। इस कारणवश शिव जी जो दूसरे ही अंश स्वरूप है भगवान का, और पार्वती जी जो योगमाई माँ भगवती शक्ति है, उन्होंने ही ऐसा लीला रचा। और शिव जी ने क्या किया? तीन सुतनि पहि कीन परिनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा, शंकर जगत वंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। जो देवता लोग है, सुर नर मुनिगण, सभी मनुष्यगण और मुनिवर प्रणाम करते हैं शिव जी को, और उनको जगदीश कहकर, जगत का ईश्वर कहकर पुकारते हैं। वही शंकर जगत वंद्य जगदीशा जो है, संपूर्ण जगत जिसका वंदना करके जगदीश कहकर पुकारते, उन्होंने क्या किया? तीन सुत निपहि कीन परिनामा, और कही सच्चिदानंद पर धामा। उन्होंने सियाराम सहित जो श्री रामचंद्र जी थे, जिनके स्वरूप में ही राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत चारों हैं, और योगमाई माँ शक्ति भी जिनका ही स्वरूप है, लेकिन जो पांच रूप से प्रकट हुए हैं, एक स्वयं रामचंद्र जी के रूप में, और तीन रूप से राजा दशरथ के, और कौशल्या माँ के पुत्र भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और एक रूप से जो जनक की पुत्री सीता के रूप से प्रकट हुए। एक ही परम शक्ति, पराशक्ति, देखो कैसे भाइयों के रूप में और एक माते के रूप में, सिया के रूप में भगवती के रूप में प्रकट हुए। तो इन सब समेत शंकर जी तो देख ही रहे हैं श्री राम को, जो इस समय सीता को ढूंढ रहे हैं। वो सब अपने दिव्य दृष्टि से, भगवान की दिव्य दृष्टि ही क्या, भगवान तो अपनी दिव्यता से ही सब कुछ जानते हैं। तो इस प्रकार से शंकर जी जानते हुए भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे सच्चिदानंद सत चित आनंद, जो पर ब्रह्म है, मेरा प्रणाम आपको स्वीकार हो। और पार्वती जी, ये देख करके आप लोगों ने कथन सुना होगा कि श्री रामचंद्र जी का परीक्षा ही लेने चल पड़ी। आप लोग रामायण की चौपाई पढ़ते हो और हम लोग जानते हैं जो भगवान का शरीर है वो दिव्य है, चिन्मय है, और जब राम आए तब बड़ों बड़ों का इस प्रकार से दिमाग खराब हुआ। लेकिन ये बात मत सत्य समझना कि सचमुच में पार्वती जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने तो लीला रचा है, शंकर जी और पार्वती जी ने लीला रच करके ये राम महिमा दर्शाया है कि पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म कौन होता है, और श्री राम की तक पहुंच, उनकी पहचान तो जब स्वयं हम नहीं करते तो तुम कौन होते हो करने वाले हे मनुष्य, ये बताया है। जबकि श्री रामचंद्र जी और शंकर जी और पार्वती और सीता तो एकमात्र एक ही शक्ति हैं, लेकिन लीला क्षेत्र में अनेक बन करके इस प्रकार से लीला करते हैं। और जब पार्वती जी का इस प्रकार से दिमाग खराब होना और परीक्षा लेने की विचरण आई, तो आप लोगों ने आगे ये भी सुना होगा कि राम कृपाते पार्वती सपने हु तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। शंकर जी ने डिक्लेयर किया कि अरे राम कृपा से पार्वती, आपके मस्तिष्क में तो एकमात्र कभी स्वप्न भी शंका नहीं हो सकता, कल्याण के लिए, जग हित के लिए ऐसा लीला रचा गया है। तो जो ये देखी जाती है कि बड़ों बड़ों का दिमाग खराब हो जाता है, ये जड़ मोह ही कौन है, ये जड़, ये 100% सभी जड़ है। जो जिसने भगवत प्राप्ति नहीं किया वो सब जड़ है, यानी मूर्ख है। देखी देखी आचरण तुम्हारे, जड़ मोह ही कौन है, ये जड़ है, ये सब मूर्ख लोग जो हैं वो कौन है, ये माया के अंडर में जो रहते हैं, जो हम जैसे नर नारी जो माया बद्ध जीवात्माएं हैं, मायातीत महापुरुष और संत और फिर मायाधीशपति भगवान, ये कैसे जड़ हो सकते हैं, ये मूर्ख नहीं, लेकिन ये भी कभी कभी ऐसा एक्टिंग करते हैं, लीला करते हैं हम जड़ पुरुषों को ये दिखाने के लिए कि देखो हम अपने ये माया वाला बुद्धि लगा करके भगवान को पहचानने की चेष्टा भी ना करें। एक दो चार नहीं, यहाँ पर तो बस जिसको जना दे वह उनको जान ले, तुम्हारे ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत तो भगत भगत उर चंदन, जिनको वो कृपा करके जनवा दे वही जान ले, नहीं तो सभी 100% जड़ ही है, मूर्ख ही है, जड़ता की कोई लिमिट नहीं है। तो वह घोर से घोर रामा अवतार के पहले ही रामायण लिख देने वाले क्यों वाल्मीकि जी ही क्यों ना हो, या राम कृपा से उन्होंने संपूर्ण रामायण को राम के आने से पहले लिख दिया, अन्यथा तो वे राम भी नहीं बोल सकते थे, बेचारे मरा मरा ही कहते थे। यानी ये भी लीला करके भगवान ने वाल्मीकि के रूप में दिखाया, दर्शाया कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भगवान का अवतार यानी उनका शरीर दिव्य होता है, चिन्मय होता है, यानी भगवान स्वरूप होता है, भगवान और भगवान के शरीर में भेद ही नहीं होता, वे ही स्वरूप होते हैं और वे ही तत्व होते हैं भगवत। जैसे हम लोगों के शरीर और शरीरी में भेद है, यानी माया का शरीर और हमारा जो आत्मा है शरीरी है वो दिव्य है, लेकिन ऐसा भगवान का शरीर और शरीरी में भेद नहीं हुआ करता। या सिद्ध महापुरुषों के जो गोलोक में रहते हैं उनके भी शरीर और शरीरी में भेद है, क्योंकि वे लोग तो दिव्य रूप से आत्मा है ही सभी हम सब और संत लोग भी, लेकिन वे जो महापुरुष हो जाते हैं उनको दिव्य शरीर मिल जाता है। परंतु जो स्वयं साक्षात परब्रह्म भगवान है उसमें तो एकमात्र भी शरीर और शरीर में भेद नहीं, क्योंकि उनकी शरीर ही आत्मा, आत्मा ही शरीर हो जाता है। ये दो रूप धारण करते हैं जैसे सीता और राम। सीता आत्मा स्वरूप बन जाती है और राम शरीर स्वरूप बन जाते हैं। भगवान का शरीर और उनके शरीरी दोनों एक है। कुछ लोग कहते हैं भगवान के अवतारों में रामा अवतार श्रेष्ठ है, कुछ लोग कहते हैं कृष्णा अवतार, कुछ लोग कहते हैं नृसिंह अवतार। अपने अपने हिसाब से सब बोलते हैं, ऐसा नहीं समझना। सर्वे पुराण शाश्वतश्च, सभी पुराण पूर्ण अवतार होते हैं। यही सभी भागवत और महापुराणों का और वेदों का मत है। सर्वे सर्वगुण ही पूर्णः, बराह पुराण में कहा गया कि सब जितने भी भगवान के अवतार हैं सब पूर्ण हैं। हर धर्म ग्रंथ कहता है समस्त अवतार परिपूर्ण होते हैं, भगवान के टुकड़े नहीं होते। पूर्ण मदाह पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। वेद कह रहा है पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण बचेगा, ऐसा पूर्ण है ब्रह्म। संसार के पूर्ण से पूर्ण निकालोगे तो कुछ नहीं बचेगा, भगवान रूपी पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही पूर्ण बचेगा, ऐसा पूर्ण पर ब्रह्म है श्री राम एवं श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान के रूप में जानते हैं भजते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचना कि कोई उनका अवतार बड़ा है या कोई छोटा है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही रहेगा। वो संसार के जैसे नहीं कि हम पूर्ण से कुछ निकालेंगे तो अपूर्ण वो हो जाएगा, और फिर पूर्ण से पूर्ण निकालते निकालते कुछ भी नहीं बचेगा हमारे संसार में तो। और नृसिंह राम कृष्ण में तो छहों गुण का प्राकट्य हुआ है। और जो आप कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं लिखा है भागवत में, तो पद्म पुराण में भी लिखा है रामस्तु भगवान स्वयं। यह तो जिसकी उपासना जो करता है उसके लिए जोर दे के लिख देता है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा या एक छोटा, वो तो जिस जिस जैसे जैसे संत ने अपने अपने भाव से प्रकट किया उसमें वैसे वैसे जोर दे दिया। किंतु सर्वे पूर्णः, ये बात याद रखिएगा, सभी अवतार परिपूर्ण है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। जिस अवतार काल में जितनी शक्ति प्रकट करने की आवश्यकता होती है उतनी शक्ति प्रकट कर दी जाती है। लोग समझते हैं अंचा अवतार, प्रभावा अवतार, वैभवा अवतार, परावस्था अवतार है, और भी अनेक प्रकार के आचार्यवादी आदि होते हैं, प्रमुख चार हैं। ये जो अनेक प्रकार के अर्चा अवतार आदि होते हैं इनमें से चार प्रमुख कौन से हैं? अर्चा अवतार, प्रभवा अवतार, वैभवा अवतार और परावस्था अवतार। लेकिन समस्त अवतार परिपूर्ण है, इतना समझे रहिए, छोटा बड़ा नहीं हुआ करता। और जो भी ध्यान रहे कि ये ध्यान में रखिएगा कि किसी अवतार में जो उसका उस शरीर में रस कम है, एक अवतार में अधिक है, ऐसा भी नहीं। सब अवतार में रस एक समान से है, लेकिन जितना प्रकट करना होता है उतना दिखाई पड़ता है। अगर शुक्र भगवान के एक रोए को आप देखेंगे तो वही आनंद मिलेगा जो श्री कृष्ण के या श्री राम के आलिंगन में मिलता है। आनंद में कोई अंतर नहीं है, अनंत प्रेमानंद प्रत्येक अवतार के प्रत्येक रोए में है। अब देखिए हनुमत के आलिंगन में, पवन सुत हनुमान के आलिंगन में जो आपको प्रेम मिलेगा वो आनंद और प्रेम राम स्वरूप भगवान में भी आपको उतने ही तो मिलेगा। क्योंकि रूप बदल जाने से एक हनुमत वानर के रूप धारण करके और एक श्री राम मनुष्य रूप धारण करके और एक श्री कृष्ण और एक शुक्रा रूप धारण करके, उसमें वो पर्सनैलिटी का अंतर नहीं होता, उनकी शक्ति या रस का अंतर नहीं होता। इसलिए प्रत्येक अवतार के प्रत्येक रोए में वही वही आनंद और परमानंद और रस है। लेकिन इतना अवश्य है कि साधारण व्यक्ति को सुअर के रूप में भगवान का ध्यान करना हो अथवा किसी ऐसे रूप में, तो मन का लगाव कम होता है। इसलिए राम कृष्ण ये दो स्वरूप का उपासना हमारे देश में, हमारे संपूर्ण जगत में प्रचलित है। वस्तुतः भगवान के समस्त अवतार परिपूर्ण हैं और समस्त अवतार सदा होते रहते हैं, यह भी ध्यान रखिए। या तो आपके सामने 25 अवतार या 24 अवतार या 10 अवतार गिनाए जाते हैं, या तो ऐसे ही एक ब्रह्मांड के दो चार युग के अवतार हैं। अनंत ब्रह्मांडों में, एक एक ब्रह्मांड में अनंत अनंत अवतार हो रहे हैं और अनंत बार हमारे सृष्टि में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आते हैं और अनंत बार प्रभु अवतार लेते हैं। तो अनंत अवतार हो रहे हैं, हो चुके हैं, होंगे, सीधी सीधी बात यह है। यह संख्या जो भागवत में कहा गया वैसे ही कहा, अवतार यह संख्याता पद्म पुराण में कहा गया। तो इस प्रकार से यद यद धिया त उर्गाय विभावयन्ति तत् तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। ये जैसे भागवत इत्यादि में चर्चा हुई कि जिस प्रकार की कामना भक्त कर लेगा उसी प्रकार का शरीर भगवान का बन जाएगा और भगवान को इसमें कोई आपत्ति नहीं कि तुमने ऐसी कामना क्यों की, क्योंकि कोई प्रयास नहीं उसको। तो भगवान के समस्त अवतार का अभिप्राय है अनंत अवतार। आपको जिस अवतार का जो स्वरूप पसंद हो, यानी जो भी अवतार हुआ हो, आप उस रूप को चुन ले। श्री कृष्ण रूप, श्री रामचंद्र रूप, जो भी रूप आपको सुंदर लगे, मन भाई लगे, अच्छी लगे, जिसमें आपका प्रेम और रुचि बने और उस रूप में भगवान के अनंत गुण और अनंत शक्तियों का संस्थान करके, स्थापित करके उसको और उससे अनुराग बढ़ाओ। तो कोई भी रूप हो, कोई कभी लोग कहते हैं मुझे शंकर जी के रूप में ज़्यादा रुचि है, ठीक है, उसी में आप अनंत शक्ति, अनंत मात्रा के आनंद बढ़ाओ और उसी से आप परमानंद, परम शांति, परम प्रेम और जो सबसे बड़ी बात है सेवा की भावना बनाते हुए भक्ति करो। आपका जो सगुण साकार भगवान के प्रति, उनके नाम रूप लीला गुण धाम जन के प्रति जो अनुराग होगा, उस अनुराग का समस्त अवतारों में एक सा ही फल मिलेगा। तो भगवान राम के अवतार का भी यही कारण है कि जीवों को अपना नाम दान करके आप लोगों ने जिस वाल्मीकि के बारे में बार बार सुना कि मेरा नाम कह करके इतने बड़े महापुरुष बने हैं, वो अगर वह अवतार लेकर ना आए होते तो यह वाल्मीकि सरीखे और भी अनंतानंत जीव ब्रह्म रागते नाम बड़ बरदायक बरदानी कैसे होता। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि भगवान अवतरित होते हैं ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि जब वाल्मीकि जैसे ने मुझे पुकारा और मैं आया तो आप भी मुझे पुकारोगे, उसी प्रकार से दीनहीन बन करके तो मैं अवश्य आता हूँ। तो उनकी एक ही अवतार रहस्य आप समझ सकते हो कि परम आनंद, परम प्रेम प्रदान करने के लिए और भक्तों की विनती सुन करके वे आते हैं। श्री रामचंद्र जी जो प्रकट हुए, वो कैसे प्रकट हुए ये भी आप लोग को हम थोड़े समझा दें संक्षेप में। श्री रामचंद्र जी आप जानते हो कि महर्षि कश्यप थे और उनकी जो श्रीमती थी उनका नाम अदिति। तो महर्षि कश्यप और अदिति ने घोर तपश्चर्या किया था और इस तपश्चर्या का फल उन्हें जो भगवान की फल या जो भगवान की दान उनको मिला, उनके तपश्चर्या के फल स्वरूप वो था कि वे महर्षि कश्यप और अदिति दशरथ राजा और कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में प्रकट हुए और अयोध्यापुरी का राजा दशरथ बने और महारानी जो श्रेष्ठ थी वो कौशल्या बनी। महाराजा दशरथ ने एक दिन बहुत विनती किया अपने गुरु वशिष्ठ के पास में जाकर कि कोई भी वंश परंपरा चलाने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय कुल है और क्षत्रिय कुल सदा राजपाट संभालते हैं, तो एक क्षत्रिय होने के नाते एक राजा को अपने राजपाट ठीक तरह से संभालना होगा, दुष्टों का नाश करना होगा और सत धर्म का संस्थापन करना होगा, ब्राह्मणों का रक्षा भी करना होगा, धर्म मर्यादा पर चलना भी होगा। ये एक क्षत्रिय का श्रेष्ठ धर्म होता है। एक क्षत्रिय उनके कोई भी बच्चे नहीं, तो उनके बाद में ये राजपाट संभालने वाला कोई जरूर से इस सृष्टि पर धर्म जो मर्यादा में हो वो ऐसा पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। ऐसे पेश लेकर के जब वशिष्ठ के पास में राजा दशरथ गए तो वशिष्ठ जी ने उनको कहा, चिंता मत कीजिए, समय अनुकूल आने पर आपका सभी बात ठीक ही बन जाएगा। इस प्रकार से दशरथ जी जब चले आए तो एक दिन वशिष्ठ जी ने ऋषि श्रृंगी को बुलाया और बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में अग्निदेव को जब खीर की आहुति दी गई तो साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए प्रसन्न होकर के, और प्रसन्न होकर के जब प्रकट हुए तो उस खीर को उन्होंने राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ को बताया कि जाओ इसे अपने रानियों में जैसे जैसे ठीक भाग समझो उसी प्रकार से बांट दो। तो राजा दशरथ को ये खीर जब दे दिया गया वो अपने रानियों के पास गए और रानियों को बांटा। कौशल्या, केकई और सुमित्रा, ये तीन जो रानियां हैं, ये मत समझ लेना कि वो हमारे मनुष्य के समान हैं। ये देखो बहुत बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हुए हैं और ये भगवत प्राप्त हैं, ये सिद्ध संत महापुरुष हैं। इनमें अपना मनुष्य का बुद्धि मत लगाना कि संसार में हम भी एक दो तीन रानियां रखेंगे तो क्या गलती हो गया। हम कभी भी भगवान या संत का नकल नहीं कर सकते। ये तो जो दशरथ है स्वयं वेद स्वरूप है और इनकी तीन जो रानियां हैं ये तो यूं समझो जैसे वेद का तीन अंश होता है, एक कौशल्या जो ज्ञान मार्ग, जो ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग का मार्ग दर्शाने वाली, और दूसरी जो केकई है मार्ग, यानि धर्म और कर्म में क्या कठिनाई, अधर्म और कर्म कितना क्लिष्ट होता है और सत्य धर्म और कर्म क्या होता है। इस प्रकार से केकई के हर आचरण में आप देखोगे कि अधर्म और कर्म से गिरा हुआ प्राणी कौन और कैसा होता है और धर्म और कर्म के पालन करने वाला प्राणी कैसा होता है। जैसे दीपक तो तभी जलती है और तभी उसकी शोभा मिलती है जब अंधेरा हो, बिना अंधेरा का दीपक का शोभा क्या है, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि केकेई में दोनों जो धर्म और विरोधी धर्म का अधिष्ठान देखा जाता है, ये कर्म बहुत ही क्लिष्ट होती है और इस क्लिष्ट कर्म को दर्शाया है केकेई के स्वरूप में। इसी प्रकार से सुमित्रा में संपूर्ण भक्त और भक्ति में कैसे आचरण होती है वो दिखाया गया, पूरा सेवा भावना वो सुमित्रा में दिखा और दिखाई गई। इस प्रकार से ज्ञान कर्म और भक्ति का तीन स्वरूप जो है यही समझो आपके यहाँ कौशल्या, केकई और सुमित्रा के रूप में हुए हैं। तो इस प्रकार से तीनों रानियों को जब खीर दिया गया तो वो पायस को आधा भाग किया और एक आधा भाग सीधा कौशल्या को दिया दशरथ ने और दूसरे भाग को उन्होंने केकई को दिया। उसमें से जो दूसरे भाग का आधा भाग था वो केकई को मिला और आधा भाग उन्होंने सुमित्रा को दिया। सुमित्रा को जब दिया तो आधा कौशल्या और आधा केकई से लेकर के दिया। इस प्रकार से आप देखें कि कौशल्या को आधा भाग खीर का मिला और खीर के जो आधा हिस्सा थी उसमें से आधा किया और एक आधा तो कॉटर जिसको आप कहेंगे वो केकई को मिला और दूसरी जो आधा थी उसकी कौशल्या और केकई के हाथ पर रख करके सुमित्रा को दिया, यानी उन दोनों का अनुमति सुमित्रा को दिया। इस प्रकार से विभाजन किया वो खीर का। और कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए श्री राम, केकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से प्रकट हुए दो पुत्र, यानी दोनों भाग जो कौशल्या और केकेयी के हाथ पर छुआ कर दिया था, दोनों के अनुमति, दोनों के सेवा में प्रकट हो गए, एक शत्रुघ्न और एक लक्ष्मण। लक्ष्मण राम के सेवा में और शत्रुघ्न भरत के सेवा में। इस प्रकार से आप ये देखें कि थोड़ी बहुत मैंने वंश परंपरा भी बताई और राम अवतारे रहस्य भी समझाई। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र का मेष्टि यज्ञ जो कराया था उसमें चारों ही पुत्र उत्पन्न हो गए थे, यानी चारों ही पुत्र तो प्रकट ही हो गए थे और ये तीनों रानियां गर्भवती हो गई थी, लेकिन श्री रामचंद्र जी का चारों भाइयों जो थे उनकी तिथि कितनी सुंदर हुई, कितना सुंदर समय उन्होंने चुना माँ के गर्भ में आने के लिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और बहुत ही सुंदर मनभावित पवन चल रहे थे। श्री राम के प्रिय अभिजित मुहूर्त था, दोपहर का समय था, पूर्ण 12 बजे। ना बहुत सर्दी थी न बहुत धूप थी, जैसे इस समय का मौसम अभी आप लोग न्यूजीलैंड में देख रहे हो, ऐसी ही मौसम सोचो भारतवर्ष में भी है, जबकि वहाँ गर्मी का समय आने वाला है, यहाँ सर्दी का समय आने वाला, लेकिन चैत्र का कितना सुंदर महीना है और कितनी सुंदर ये समय है और शुक्ल पक्ष का समय, ऐसी ही तिथि नवमी और ऐसे ही समय को चुन करके प्रभु राम प्रकट, भय प्रगट की कृपाला दीन दयाला। तो आप लोग बड़े धूमधाम से ये पावन पर्व को मनाएंगे ही, और इतना बात भी ध्यान में रखिएगा कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देख ही रूप महारंधीरा, मनहु बिरारस धरे सरीरा, डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी, रहे असुर छल छो निप वेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। इस प्रकार से आप लोग देखे कि जो जो ने जिस जिस भावना से प्रभु को देखा उन्होंने उसी उसी रूप से प्रभु को पाया, किसी ने उन्हें परम सौंदर्य और परम आनंद के अवतार देखा, तो किसी ने उन्हें बहुत ही बड़े वज्र के समान देखा और किसी ने उन्हें स्वयं काल स्वरूप देखा, कोई देखकर डर गया और कोई तो देख करके उन्हें अपना लिया। तो हम लोग सब अनुकूल भाव से प्रिय भाव से उन्हें सच्चिदानंद के रूप में देखने की चेष्टा करें, रावण और रावण के जो राक्षसी लोग उनके समान भयभीत होकर के काल रूप ना देख करके हम प्रभु को प्रभु में आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप देखें। इस प्रकार से हम धूमधाम से अपने प्रभु के रामनवमी के पावन पर्व पर राम जन्म मनाएंगे। बोलिए सभी को एक बार राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग एक बार मिल करके बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावल रामचंद्र की जय।
ಆಯತಿ ನೀನು ಯಾದರು Yeah. माता तू ही पिता है,
तू ही माता तू ही पिता है,
तू ही तो है राधा का श्याम
और भाई बहनों, ये बहुत पवित्र और सुंदर रामधुनी के साथ साथ आज का प्रोग्राम को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपका मन भाया है। आप सभी को झनकार वुमेन्स हिंदी रेडियो प्रोग्राम की ओर से रामनवमी का जो पावन पर्व है बहुत ही खुशी खुशी बीते और कल्याणकारी रहे। मेरी ओर से प्रतिमानंद की ओर से नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो।
तेरे चरणों में चारों धाम सवारे,
तू ही बिगाड़े तू ही सवारे,
तू ही बिगाड़े तू ही सवारे,
तू ही बिगाड़े तू ही सवारे,
इस जग के सारे
सबका स्वामी।